کے سامنے یہ اب ایک مذہب ایک دھرم پوتر دھرم باقی ہے جس میں یہ سدھ کرنا ہے کہ وہ پرماتما مانس جیسا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ گرو گرنتھ صاحب کے اندر دکھائیں گے اس کا نام کبیر ہے۔ اب گرو نانک دیو جی سکھ دھرم کے پرتھم مہاپرش مانے جاتے ہیں، اور گرو نانک دیو جی کون تھے، یہ آتما کون تھی؟ یہ راجا امریش تھے ستیوگ میں، اور راجا امریش تھے جب یہ بھگوان وشنو کے اتنے اچھے اپاسک تھے کہ اس کے سامنے درواسا جیسے مہاپرش جو توب مانی جاتی تھی، ان کے سامنے نتمستک ہو گئے تھے ان کی ست بھکتی کو دیکھ کے۔ اس کے بعد یہ پنیاتما نے وشنو لوک میں اپنے پنوں کو سماپت کیا، اور پھر دوسرا جنم یعنی اس کے بعد ان کا جو منس جنم جب ہوا تو راجا جنک ہوئے، جو سیتا جی کے منہ بولے پتا جی کہلاتے تھے۔ وہ راجا جنک وہی گرو نانک دیو جی یعنی راجا امریش والی کا آتما راجا جنک ہوئے، اور راجا جنک جب یہ اس میں بھی بھکتی، کیونکہ انش راجا ہوتے رنگ جس میں پربھو کا پچھلا انش ہے بھکتی کا، وہ ہمیشہ لین رہتے ہیں اور پھر تلاش کر لیتے ہیں، جیسے ان کو سادھنا ملتی ہے پھر وہ لگ جاتے ہیں ڈٹ کر۔ اتنے اچھے سادھک تھے کہ سکھدیو رشی جو تینوں لوکوں میں سدھی کے آدھار پر آکاش میں تینوں لوکوں میں اڑ کے چلا جاتا، سورگ میں، پھر پرتھوی لوک پہ، پاتال لوک میں، ایک دن وہ وشنو لوک میں پہنچ گیا، وشنو جی کے لوک میں، اس کو رہنے نہیں دیا۔ کیوں نہیں رہنے دیا؟ کہ اس کا گرو نہیں تھا۔ اس کو واپس کہا بھگوان وشنو نے کہ جاؤ تم اپنا گرو بنا کر پھر یہ آ سکتے ہو، نہیں تو نہیں آ سکتے، نگرے کو یہاں ستھان نہیں۔ کس کو گرو بناؤں پربھو، میرے سمان اس پرتھوی پر کوئی اور رشی نہیں۔ بھگوان وشنو نے کہا کہ یہ بھی تیری مورکھتا سکھدیو، یہ بھی تیری اجانتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سپریم مان بیٹھا، راجا جنک سے جا کر اپدیش لے لو، اور وہ آج ایک نمبر کے میرے لیول کے یعنی بڑے اچھے سادھک ہیں، میرے سنت ہیں، وہاں جاؤ۔ سکھدیو رشی نے راجا جنک سے اپدیش لیا۔ اس کے بعد راجا جنک جب انت سمے میں جانے لگے وشنو جی کے لوک کی طرف یعنی اپنے سورگ کی طرف جہاں اس کو ستھان ملنا تھا، ویمان میں بیٹھے جا رہے تھے، رستے میں اس کال کا ایسا جال ہے، ایک نرک آتا ہے بہت لمبا چوڑا، اور اس نرک کے ساتھ سے راجا جنک کا ویمان نکال دیا۔ راجا جنک نے دیکھا کہ اس میں ہاہاکار مچی ہوئی، بہت سی آتمائیں تڑف رہی ہیں۔ راجا جنک دیالو یعنی رشی لوگ دیالو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ویمان کے چالکو ویمان روکو، یہ کس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کس کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے؟ اب ان جو ساتھ میں گئے ہوئے تھے بھگوان کے وہ دوت، انہوں نے کہا راجن یہاں پر ایک نرک ہے، سب پرانی اپنی کرنی کا دنڈ بھوگ رہے ہیں۔ راجا جنک نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو سب کو، میرے سے دیکھا نہیں جاتا ان کا یہ دکھ۔ پارکت بولے آپ یہاں راجا تھوڑے ہی ہو، آپ کا حکم تھوڑا ہی چلے گا، یہاں پر تو دھرم راج کا حکم چلے گا، وہ کہے گا تو چھوڑے جائیں گے، نہیں تو نہیں چھوڑے جائیں گے۔ دھرم راج کو بلا لیا کہ دھرم راج سے میری بات کراؤ، دھرم راج آ گیا نیچے۔ تو دھرم راج نے کہا کہ راجن تم چلو اپنے سورگ میں، یہ تو اپنی کرنی کا بھوگ بھوگ رہے ہیں، بھوگنے دو ان کو۔ راجا جی نے کہنے لگا نہیں دھرم راج، میں آگے نہیں جا سکتا، ان کو سب چھوڑ دو جب میں آگے چلو، نہیں تو مجھے بھی یہی رہنے دو۔ اب دھرم راج کہنے لگے آپ تو دیکھو کتنے ودوان پرش ہو، اپنی کرنی کا پھل سب نے بھوگنا پڑتا، یہ تو اٹل سنویدھان ہے پربھو کا، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب نہیں تو پھر میں یہی رہوں گا کہ آپ کو میں یہاں نہیں رہنے دے سکتا، یہ بھی نیم ہے۔ ایک کام ہے کہ آپ اپنے کچھ پن دے دو ان کو تاکہ میں ان کو باہر نکال سکوں۔ راجا جنک بولا مجھے منظور ہے۔ اپنے آدھے پن سنکلپ کر دیے، اس میں 12 کروڑ سینا تھی، 12 کروڑ وہ پرانی وہاں دکھ پا رہے تھے، ان 12 کروڑ پرانیوں کو جو دکھ پا رہی تھی آتماؤں کو اپنے آدھے پن دے دیے۔ راجا جنک کو تو خالی کروا دیا، کال نے آدھا پن دوا دیا اس ٹائم، اور وہ جو نرک بوگری تھی وہ آتمائیں وہ باہر نکال دی، نرک خالی کر دیا، سورگ میں بھیج دی۔ اور جب تک ان 12 کروڑ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے وہ سارے ایک جیسے پن، جب تک ان 12 کروڑ پن آتماؤں جو نرک بوگری تھی ان کے پاس راجا جنک کے سنکلپ کیے ہوئے پن رہیں گے، تب تک تو سورگ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر اس نرک میں انہی جو ان کے جس کے کارن نرک ہوا تھا وہ کرم پھر اس نرک میں بھوگنے پڑیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ उधर से राजा जनक आधा खाली कर दिया, पुण्य खत्म करवा दिए। फिर ये चौथे यानी कलयुग में वही आत्मा गुरु नानक देव जी के रूप में अब पश्चिमी पाकिस्तान तलवंडी वहां एक कस्बा है, उसमें श्री कालू राम मेहता जी के घर पे खत्री के अरोड़ा के घर पे इस पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। पिछले संस्कार वश इसमें फिर भी इनके अंदर श्रद्धा भक्ति बहुत थी, प्रभु में आस्था थी। इनको एक ब्रजलाल नाम का पांडा गीता पढ़ाया करता था और गीता जी के आधार पर गुरु नानक देव जी ने श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मान के और उसी के आधार पर एक, क्योंकि वेदों गीता में लिखा है ओम नाम, और आखिर में घुमा फिराकर कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, मुझे अव्यक्त निराकार को तू ही एक निरंकार। यहाँ उनकी सोच रुकी हुई थी, किसकी? गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी अपनी बहन नानकी की ससुराल में जो सुल्तानपुर शहर में थी, वहां एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। उस समय इनके दो संतान हो चुकी थी, शादी भी होगी थी, दो पुत्र हो चुके थे गुरु नानक देव के। सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ उनके जीजा जी ने, उनका नाम श्री जयराम था, गुरु नानक देव जी के जीजा जी ने जो सुल्तानपुर के नवाब के वहाँ उच्च विराजमान थे, अपनी गवाही देकर अपनी शनाखत देकर के गुरु नानक देव जी को मोदी खाने का वहाँ यानी नौकरी दिवा रखी थी। गुरु नानक देव जी रोजाना सुबह सुबह एक बेई नदी है सुल्तानपुर के बिल्कुल साथ में, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी पर, बेई नदी पर घूमने के लिए सुबह स्नान करने के लिए जाते, और भी बहुत से नगर के निवासी वहीं स्नान करने बेई नदी पर जाते थे। गुरु नानक देव जी वहां स्नान करने के लिए काफी देर सुबह सुबह बैठकर अपने जो प्रभु की आराधना थी, प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मस्त रहते थे। एक दिन वो पूर्ण परमात्मा काशी में आए हुए थे, वो कबीर परमेश्वर काशी में जुलाहा बन के नानक बन के। कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं हुआ उनका, वो स्वयं लहर तारा तालाब में बनारस में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और अपने आप आकर के आकाश से आए थे और अपने सतलोक से एक बालक का रूप बना था। सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष तक वो परमेश्वर यहाँ पूरी लीला करके और अपने सतज्ञान का एक संग्रह बनाकर वाणियों का, और वो सह शरीर चले गए थे। सन 1398 से 1518 तक कबीर परमेश्वर का यहाँ की मौजूदगी यानी रहे मालिक, उधर से 1469 से लेकर और 1523 या कुछ ऐसा लिखा है उनका गुरु नानक देव जी का शरीर, यानी वो 1469 से लेकर 1518 तक वो समकालीन रही। कबीर साहब जो काशी से अंतर्ध्यान हुए और जिस समय गुरु नानक देव जी प्रतिदिन की तरह उस बेई नदी पर बैठे थे वहां पहुंच गए। कैसे पहुंचे? एक जिंदा महात्मा का रूप में, जिंदा मुसलमानों में एक महात्मा होते हैं संत साधु लोग, उनको फकीर बोलना, फक्कड़ फकीर। वो कैसा वेशभूषा होती है कि ऊपर एक काला टोप लंबे चोटे का ऐसे, और एक ओवर कोट पूरा एक का कपड़ा का बना हुआ, जैसे कोट सा होता चोला बोलना उसने, वो घुटनों से भी यानी कुछ नीचे तक होता है और काला रंग होता है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। ऐसा रूप बनाकर और गुरु नानक देव जी को जाकर के राम राम कहा, सलाम वालेकम कहा। गुरु नानक देव जी ने वालेकम सलाम की का उत्तर दिया और कहा आओ भक्त जी बैठो। बैठ के गुरु नानक देव जी ने पूछा कहां से आए हो? कबीर साहब ने कहा मैं काशी में एक जुलाहा हूं, धानक हूं छोटी जाति का, और वहां अपना रोजी कपड़ा बुनने का काम करता हूं। और हे भक्तात्मा नानक जी, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है और मैं सब जगह भ्रम भटक लिया। कबीर परमात्मा अपने आप को एक दास बताते हैं, एक गुलाम बताते हैं, एक अज्ञानी बताते हैं, ताकि सामने वाले को अपना सत्ज्ञान समझा सके। इसलिए वो परमात्मा अपने को अधीन दीन बता के और गुरु नानक देव जी से वार्ता करना चाहते हैं कि ताकि मैं इस प्यारी आत्मा को अपना सतमार्ग बता सकूं। कहते हैं कि मैं सब जगह घूम लिया और मुझे आज तक सतज्ञान नहीं मिला, ना मुझे मुसलमान धर्म से संतुष्टि हो पा रही है जो वर्तमान के गुरु लोग मुझे बता रहे हैं, और मैं हिंदू संतों के पास बहुत जा चुका हूं पर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मेरी संतुष्टि नहीं है। आप मेरा भ्रम निवारण कर दो, मुझे उपदेश दे दो, मुझे शिष्य बना लो। और वैसे मैंने एक रामानंद नाम के बहुत बड़े महापुरुष हैं काशी में, उनको उनसे भी उपदेश ले रखा है पर मेरी उनसे संतुष्टि नहीं हो पा रही। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार इस प्यारी आत्मा को पहले इसको महिमा दूं ताकि ये बोलना मेरे तो बात करे और फिर मैं अपना ज्ञान समझा दूं। तो गुरु नानक देव जी को जैसा सुना था वो कहने लगे, देखो जिंदा तेरे बड़े भाग है, तूने कमाल कर दिया, मुसलमान होकर एक हिंदू से तू वार्ता कर रहा है, धन्य तेरे भाग। ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए, हमने परमात्मा को पाना है, इसमें जाति और मजहब की आंट नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी को जितना गीता में सुना था कहने लगा, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि एक ओम नाम का जाप, वही एक ओंकार और उसी की भक्ति करनी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सब कुछ रचने वाला और वो अजर अमर है। श्री कृष्ण ऐसे है, भगवान विष्णु ऐसे है, यानी वो अपनी महिमा जैसे हिंदू समाज में वो सब बताने लगे। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, मैं कुछ प्रसन्न कर सकता हूं, क्योंकि देखो जब तक मेरे शंका का निवारण नहीं होगा तो मैं उपदेश लेने योग्य भी नहीं हो सकता। अका पूछो क्या बात है कि जैसे आप भगवान विष्णु को यानी कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे गीता बोल रहे हैं, आप कहते हो ये अजरो अमर है, इनका विनाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान है। अका जी मैं क्या कहता हूं, गीता में लिखा है। कबीर साहब ने कहा कि चौथे अध्याय का पांचवा श्लोक उसको देखना दोबारा एक बार, उसमें क्यों गीता जी रोज पढ़ा करते, गुरु नानक देव जी का कंठस्थ याद थी, उसमें लिखा है भगवान गीता बोलने वाला कहता अर्जुन तेरे और मेरे तय बहुत जन्म हो लिए, और वो परमात्मा तो कोई और है भाई, जिसकी भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा वो परमात्मा अविनाशी कोई और है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे राजा लोग पहले ना थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे ना होंगे या मैं और तू आगे नहीं होंगे। ये देखिएगा यही दो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 में, ये भगवान तो स्वीकार करता है कि आप और हम तो जन्म मृत्यु में सदा रहेंगे, मैं तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरी और मेरी तो आगे भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब 17वें में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, ये देखो। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 17 के नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, तेरे तो और मैं तो नाशवान है भाई। और फिर 18वें इस 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। तो ये क्या चक्कर है गुरु नानक देव जी, मुझे नाराज ना होइयो, प्रेम पूर्वक पूछ रहा हूं मैं तो, एक दास बनकर आपका, मुझे ये बता दो। अब जब तक ये देखो अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर यानी कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए तो वो पूर्ण परमात्मा का जानकार होगा, उसके बाद उससे पूछकर और सारी क्रिया करना, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, और जिसमें गए हुए फिर लौटकर पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने सारे इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिन ब्रह्मंडों को सब ब्रह्मंडों को जिसने रचा है, और ये भगवान तो गुरु नानक देव जी देखो स्वयं कह रहे हैं कि उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, उसके आदीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। और फिर देखियो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इसमें क्या कहा है कि हे भारत सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 18वां अध्याय 62वां श्लोक, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी सतलोक शाश्वतम स्थानम, यानी सतलोक कहो सनातन परम धाम कहो चाहे सतलोक कहो चाहे रत धाम कहो, सनातन परम धाम को सतलोक है ये। अब गुरु नानक देव जी ने अब ये जो वार्ता हो रही थी इन दोनों महापुरुषों की, परमात्मा और इस प्यारी आत्मा की, गुरु नानक देव की और परमात्मा कबीर साहब की, उस समय उस स्नान करने वाले बहुत से गांव के नगर निवासी चारों तरफ बैठ गया कि वार्ता सुनने लगे। उसमें सभी हिंदू लोग गीता का बहुत पाठ करते थे, आम व्यक्ति सुनता था पढ़ता था और बड़ी चर्चा होती थी, तो सबको पता था कि गीता में कहां क्या लिखा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने पुराने ज्ञान के आधार पर सामने सत होते हुए स्वीकार नहीं किया और कहने लगा जिंदा तू तो बात बहुत बनाता है, तू तो मेरा गुरु बनने आया है, तू मुझसे ना पूछने नहीं आ रहा। नाराज हो गई। कबीर साहब बोले महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपसे एक करबद्ध होकर प्रार्थना की है, अगर संशय निवारण कर सकते हो तो कर दो और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी कोई शब्द से आपको दुख हुआ तो मैं उसका क्षमा याचना करता हूँ, और उठ कर चल पड़े। अब गुरु नानक देव जी से पूछने लगे कौन था ये, वो दूसरे व्यक्ति, कहने लगे ये तो ऐसे उठपटांग बातें कर रहा था, छोटी जाति का कमीन है ये, दुल्हा वहां का काशी बनारस का रहने वाला। चले गए कोई बात नहीं, लेकिन वह सच्चाई सामना आख्या आगे देख ली, पर उस प्यारी आत्मा ने नींद आनी बंद होगी गुरु नानक देव ने। अरे सचमुच कबीर साहब ने कहा कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये भगवान तो कहता मैं काल हूं सब न खाऊंगा और आप इसी की पूजा कर रहे, और तेरे जैसी प्यारी आत्मा गुरु नानक देव, ये भी वार्ता हुई मालिक की कि आप अमरीश राजा थे सतयुग में और त्रेता युग में आप राजा जनक थे, और ऐसे अच्छे समय में आप जैसी पुण्यात्मा ऐसी पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक भी पहुंच गए, काफी वर्षों तक मारे, और आप जैसी ऐसे निर्मल साधक की भी जन्म मृत्यु बनी हुई है तो आम जीव की के पार बसाओगी, अब कल युग में आप क्या कमाई करके ले जाओगे जब ऐसे समय में भी आपकी मुक्ति ना हुई, तो इस निरंकार को जिसको तुम निरंकार निरंकार कहे है ना सारे, ये निरंकार नहीं है, आकार में ये काल ये सब ने खाता हुआ बैठ के, ये बात उनके हृदय में समागी भाई सचमुच बात तो सत्य है। और मन में प्रार्थना करता है परमात्मा हे भगवान अब क्या वो संत आ जाता, मैं उससे खूब बात करूं, क्योंकि देखो जिसने परमात्मा की चाह एक बार तो दुख होता है अपनी साधना ने कोई ऊट पटांग कह दे दुख तो होता है, लेकिन उस दुख का ये नहीं मतलब होता कि माननीय नहीं, उसमें फिर गहराई से जाना चाहिए भाई इसने क्यों मना किया, ये साधना ठीक हो ना। अब जैसे मैं आपके नोट को 1000 के नोट को नकली बताता हूँ, बता दिया मैंने, तो आपने चिंता तो होनी चाहिए इस बात की भाई क्यों बताया, जिसको 20 जगह दिखावा वास्तव देखिए भाई मेरा नकली तो नहीं है, और ठीक है तो फिर बहुत अच्छी बात, फिर दुख किस चीज बात की, फिर दुख मानना ही नहीं चाहिए, और दुख है महसूस है तो फिर देखो उस सब कंपेयर करो उसको और फिर बेड़ा पार हो जाएगा, अपना नकली था तो असली ले लो उसका समाधान करवाओ। तो जी ऐसे काफी दिन के बाद गुरु नानक देव जी रोज आत्मा तो पुकार करे एक बार उस संत फिर आ जाए तो मैं उससे खूब बात करूं और बहुत गहराई तो बातें पूछूं, ये तो सारी ऐसा ठीक था। अब क्या हुआ एक दिन फिर ऐसे बेई नदी पर वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी वहां पर बैठे और नौकर उनका कपड़े लिए बैठा नहाने की खातिर, वो तैयार हो रहे कपड़े निकाल के और नहाने वाला कपड़ा ही बांधे बैठे और शांत मन थे एकांत में। इतने में वही परमेश्वर कबीर साहब काशी वाले धानक दुल्हा उसी जिंदा वाले रूप में वहां दिखाई दिए थोड़ी सी दूरी पर, और गुरु नानक देव जी गदगद हो गए को आते गए आज फिर ये अब उस दिन वो परमेश्वर आए तो केवल कबीर गुरु नानक देव जी को दृष्टि गोचर है, बाकी स्नान करने वालों को दिखाई नहीं दे रहे वो परमात्मा ने, क्योंकि अंतर्यामी दो चार जैसा रूप बना ले। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आओ मात जिंदा महात्मा, आप नाराज तो नहीं होगे मेरे तय, उस दिन मैंने आपसे कुछ ऊट पटांग किया। नहीं जी, मैं तो जिज्ञासु हूँ और आप मुझे जूते लगाओगे तो भी मुझे ताप के बिना कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता, मैं तो संतों की तलाश करता फिरता हूँ। गुरु नानक देव जी जानगे भाई ये तो बहुत ही विनम्र आत्मा है, पर आम व्यक्ति नहीं है ये। फिर प्रश्न उत्तर शुरू हुए, तब गुरु नानक देव जी ने अंत में कहा कि वो परमात्मा कोई और है, गुरु नानक जी वो तो कोई और परमात्मा है और उसका संदेश वाहक मैं लेकर आया हूँ वो संदेश, और मेरे पास उसका सत भक्ति और सतनाम सच्चा नाम मेरे पास है। गुरु नानक देव जी बोले देख जिंदा, ठीक है भगवान हो गए, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन आपके ज्ञान के सामने मुझे नतमस्तक होना पड़ रहा है, लेकिन आंखा वेखू तो मानू, ऐसे सुनी सुनाई बात पर मैं विश्वास तेरी पर करूं को ना। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, तुझे आंखें दिखाता हूँ आपको। गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई स्नान करने के लिए। यहाँ पर दो प्रसंग आते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं इस दरिया में डुबकी लगाऊंगा, मुझे इसमें ढूंढ देना और फिर बाद में बात करेंगे। अब गुरु नानक देव जी ने जो ही डुबकी लगाई और देखने वालों ने देखा कि स्नान करने के लिए छलांग लगा दी और बाहर आए नहीं, परमात्मा ने क्या किया उसको पकड़ के अंदर ही अंतर्ध्यान कर दिया और अपस्ट्रीम में ले गए जिधर से पानी आ रहा था, बह करके जिस तरफ से पानी बहकर आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां ले जाकर के गुरु नानक देव बनाकर बाहर बैठा दिए किनारे पर, जंगल में ले गए आधा किलोमीटर दूरी पर कि यहाँ आ जाओ अब वार्ता करेंगे। तब गुरु नानक देव जी बोले अब जो कहोगे मैं सारी मानूंगा आपकी। और उधर से लोगों ने देखा कि गुरु नानक देव जी डूब गए, वो तो छलांग लगाई थी बाहर नहीं आए, ओए ओए भगदड़ माच गई, राजा को पता लगा, उसने गोताखोर भोजे भेजे, दुनिया ढूंढने लगी, जाल डाल लगे, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो बैठे अप स्ट्रीम में, वो ढूंढ रहे इधर जिधर पानी बहकर जा रहा था वो बैठे उधर जिधर पानी आ रहा था उससे भी 3 किलोमीटर दूर जंगल में बैठ गए दोनों, वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे काल का सारा जाल समझाऊं, पूरी सृष्टि रचना सुनाई और फिर कहा कि अब मैं तुझे वो सारे ब्रह्मांड दिखाता हूँ, उस आत्मा को निकाला शरीर से, अंदर भी जोका जो शरीर है एक सूक्ष्म शरीर इस मनुष्य जैसा ही, उसको ऊपर लेके सारे ब्रह्मांड दिखाए, सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाए, इनके द्वारा जो हो रहा ये क्रिया दिखाई, फिर काल दिखाया 21वें ब्रह्मांड में तपस्या के जहाँ जल रहे हैं जीव वो दिखाया, फिर सचखंड ले गए सतलोक में। अब उधर से परमात्मा जिंदा वाले रूप में जा रहे हैं और सामने क्या देखा, वो सतलोक में जाकर वो तप तकत के ऊपर उस तेजो में शरीर उस परमेश्वर का जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी हो, वह भी फीकी पड़े इस रूप में दूसरे रूप में परमेश्वर उस अपने उस सुंदर स्टेज पर विराजमान तकत पर विराजमान है और इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी एक रोम कुप की फीकी पड़े। अब जाकर देखा कि गुरु नानक देव जी ने सोचा ये है रब जेड़ा तकत पे बैठा जिसका गीता में संकेत है कि उसकी शरण में जा, ए है वो रब। इतने में कबीर परमेश्वर जाकर के जो जिंदा वाले रूप में थे अपने ही दूसरे रूप में एक चंवर करने लगे, चंवर होता सफेद सफेद मुलायम मुलायम बालों का एक गुच्छा सा होता है, डंडी बंदी होती है वहां तेज पुंज के हैं ऐसे सारे, तो ऐसे चंवर करे आदर से, तो गुरु नानक देव जी ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तकत पे विराजमान है और ये कबीर तो यहाँ का कोई अनुचर होगा सेवक होगा। इतना सोचा ही था कि वो तेजो में शरीर परमेश्वर का खड़ा हुआ जिंदा वाला शरीर उस तकत पे विराजमान हो गया और वो दूसरा शरीर जो तेजो में शरीर जो वास्तविक शरीर दिखाई देता वो चवर करे उस जिंदा वाले शरीर पे। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये के चक्कर रब नौकर पर रब चोर करे, इतने में वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गए और अकेले कबीर परमेश्वर जिंदा वाले महात्मा के रूप में और तकत पर बैठे हैं, चवर अपने आप घूम रहा है ऊपर। और तब कबीर साहब ने कहा था कि हे प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, सब चाहे कोई हिंदू बना चाहे मुसलमान चाहे सिख या ईसाई, तुम मेरी आत्मा हो, तुम यहाँ से गए थे यहाँ देखो ये कितनी आत्मा है, इनसे मिलो जाके, इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी का बेटा मरे नहीं बेटी मरे नहीं, अजर अमर शरीर इनका है, और देख मेरा शरीर ये तेजो में रुई जैसा है, मेरे शरीर में हाड और मांस नहीं है। और तुझे अगर आपने वापस आना है यहाँ पर तो एक सतनाम दूंगा मैं, काशी में धानक का काम करता हूँ जुलाई का, वहां आ जाना। अब ये गुरु नानक देव जी का समझ में नहीं आया, भगवान और काशी में जुलाव करके क्या करने जावा था, पर ये सामने देख लिया तो पक्का विश्वास हो गया कि जरूर कोई न कोई बात है। जब भगवान बार बार कह रहे हैं मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में जुलाहे का काम करता हूँ और सतनाम से मुक्ति होगी और किसी नाम से नहीं, और सतनाम मैं दे सकता हूँ और कोई पृथ्वी पर सतनाम देने वाला प्राणी नहीं, और देगा तो कुछ उठा देगा उसका चला नहीं, और आपने काशी आ जाना वहां मैं आपको नाम दूंगा मंत्र दूंगा। ऐसा क्या इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात बीत गई। 3 दिन लग गए। अगले दिन परमात्मा ने 3रे दिन सुबह सुबह उस आत्मा को वापस भेज दिया उसी शरीर में, गुरु नानक देव की में। और जब वो होश में आए देखा उत्तरे की ये तो भगवान के पास गया था, मैं सतपुरुष के पास गया था, अकाल पुरुष के पास गया था। सुबह सुबह उसी समय जिस नहाने का समय था उस नदी की पटरी वहां पहुंचा जिस घाट पर अन्य प्राणी नगर निवासी उस दिन भी स्नान कर रहे थे 3रे दिन। और गांव में ये हाहाकार मच गई थी कि नानक देव जी डूब चुके हैं, उनका तो वहां पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे और वहां पर उनके जो ना रुदन मचा हुआ घर में। 3रे दिन वो देखे सबने कि गुरु नानक देव तो ये आ गए, सब इकट्ठे हो गए, गांव में भगदड़ मच गई, सारा नगर इकट्ठा हो गया, वो तो जीवित है। फिर से पूछने लगे तुम कहाँ गए थे कि मैं अपने भगवान रब के पास गया था और वो रब मुझे खुद लेकर के अपने ऊपर सतलोक सचखंड में गया था, उसने मुझे आज छोड़ दिया वापस, अब उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं किसी इस पृथ्वी पर भी आया हुआ है, उसने मुझे संकेत किया है, मैं उसकी तलाश करूंगा और उसे उपदेश लेकर के अपना कल्याण करूंगा। आकर के अगले दिन मोदी खाने की नौकरी पर पहुंच गया, क्यों 2-3 दिन हो गए थे, सबने अपने रोजी रोटी का सामान लेना था तो सब भंडारा खोल दिया मालिक का, उसने गुरु नानक देव जी ने, और 1, 2, 3, 13 गिन का उस्ताद कबूल किया 13, क्योंकि सब आसार नजर आवे, काल के जाल में फंसे पड़े हम, या 1-2 दिन का गुजरान है, ना जाने कब क्या शरीर पूरा हो जा, सब सारा जोड़ा जाड़ा यही रह जा, ऐसे उनका हृदय हट गया यहाँ तक। और 13 करके चाहे कोई 100 ले गया, चाहे 500 ले गया, चाहे 1000 ले गया, सबको बैठ दिए और खजाना खाली कर दिया। अब ये करके जाके शमशान घाट पर पहुंच गए, वैसा ही रूप ना का जिंदा जैसा जिस रूप में परमात्मा मिले थे। सुल्तानपुर के नवाब को पता चला कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका खजाना खत्म कर दिया, खराब कर दिया, सब बांट डाला जनता में। अब सुल्तानपुर के नरेश ने, नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया जयराम को कि आजा तेरे सामने खजाने का अकाउंट करूंगा, अगर उसमें कोई कमी पाई तो मैं तेरे से ले लूंगा, क्योंकि तेरी मार्फत मैंने तेरे उस रिश्तेदार को यहां पर नौकरी दी थी। जयराम जी के सामने जब अकाउंट किया गया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के और ज्यादा पाए। बोलो सतगुरु देव की जय। अब सुल्तानपुर के नवाब ने सोचा भैया तो तेरे तो गलती होगी, ऐसे महापुरुष भगतात्मा पर तूने डाउट किया, शक नहीं करना चाहिए था, कहा भी उसको बुला के लाओ, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी को बुला गया तो नवाब ने कहा कि ऐसा करो भगतात्मा, ये नौकरी करो आप और मेरे से जो गलती हुई मुझे क्षमा करो, आप ये 760 रुपए आपके सरकार की तरफ ज्यादा है ये ले लो और ये नौकरी जारी रखो। गुरु नानक देव जी बोले कच्ची सरकार की नौकरी मेरे तो को ना, अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, अब मैं उस परमात्मा का तलाश करूंगा और उसका जो दिया हुआ आदेश उसको पूर्ण करूंगा। कब दिया आपके रब ने, किस्त में आपको आदेश दिया कि वो बेई नदी से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मुझे 3 दिन में वापस छोड़ दिया, अब उसकी तलाश करूंगा, इस पृथ्वी पर वो स्वयं आएगी। कहने का भाव यह है कि वो काशी में पहुंचे गुरु नानक देव जी, और वहां पर रामानंद जी, जो कबीर साहब ने कहा था मेरे गुरुदेव थे रामानंद जी, वो बोलबाला था उनका, एक नंबर के संत ऋषि थे, वहां पर सब जानते थे और कबीर साहब को नहीं जानती थी दुनिया, इसलिए परमेश्वर ने संकेत भी दे दिया था कि रामानंद जी से मिलना, रामानंद जी मुझे बताऊंगे मैं कहां रहता हूं। अब रामानंद जी को भी ऐसे कबीर परमेश्वर ने सचखंड दिखाया था, सतलोक पहले ये भी रामकृष्ण का पुजारी और ब्रह्म तक का साधक था, और उसके बाद वो स्वास्तविक स्थान दिखा करके वापस छोड़ा था ऐसे ही रामानंद जी की आत्मा को। उसके बाद रामानंद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और उस महापुरुष के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर रखा था कि तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा गुरु, सब कुछ तू ही है। उस तरह से गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि यहां आप सचखंड के बारे में जानते हो? अब रामानंद जी बोला, मैं जानता तो नहीं था पर मेरे भगवान ने मुझे जना दिया। वो कबीर नाम से आए हुए हैं और जुल्हाई का काम करते हैं, वो स्वयं परमेश्वर है। अब गुरु नानक देव जी ने कहा एक बार मेरे को उनसे मिलवा दो। उस दिन गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहब ने क्या किया कि स्वामी जी कल मैं नहीं आऊंगा आपके दर्शनार्थ, मेरे पास कपड़ा बुनने का काम ज्यादा आ गया। किसको? रामानंद जी से कहकर चले गए, स्वामी जी परसों दर्शन करूंगा आपके। जिस दिन उस प्यारी आत्मा ने गुरु नानक देव जी ने पहुंचना था, उस दिन सी अपने घर पर ही जानबूझ के कि इनको वास्तविकता दिखा दो मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं। तो गुरु नानक देव जी, रामानंद जी ने कहा कि नानक जी वो आज यहां नहीं आएंगे, वो भगवान आज घर पे हैं, वो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला मेरे को समझ में आती नहीं, वो क्या है, कौन है, के कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। तो एक सेवक भेज दिया रामानंद जी ने कि जा भाई इनके साथ जाओ और कबीर परमेश्वर के दर्शन करा जाओ। जब गुरु नानक देव जी पहुंचे उस भगवान की झोंपड़ी पर जहां बैठ कर खड्डी में वो जुलाई का काम करे थे, और देखा सामने वो चांद सा मुखड़ा गुरु नानक देव जी ने जो सतलोक में देखा था सतपुरुष को, आंखों में पानी भर के जैसे भूखे ने प्रसाद भोजन मिल जा, पैसे न जल और निर्धन न धन मिल जाए, और जैसे अपने मणि मिल जाए, इस प्रकार आंखों में पानी भर के फाई सूरत मलुक ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करता। गुरु नानक देव जी कहते हैं आंख्या में पानी भर कह के एक सवान दुई सवानी नान बल्के बोकाई सदा ब्याल और कुड़ छुरा मोटा मरदार ये धानक रूप रहा करता। तेरा संसार में एहो आस एहो आधार, नानक नीचे विचार ये धानक रूप रहा करता। रुक के लगाओ, आवाज लगाओ, देखो ये रा भगवान, देखो ये रा भगवान, ये रा वो प्रभु जिसकी तलाश दुनिया को है। अब देखिएगा गुरु नानक गुरु ग्रंथ, देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर चार, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड़ छुरा मूठ मुर्दार ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंडन करने की कार वो बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होई होई होई। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रुहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। फाही सूरत देखो, मुलुकी वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करता। ये धानक रूप रहा करता। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता। धानक रूप रहा करता। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता रे, धानक रूप रहा करता रे। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहाँ से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत, दिल ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर, बिरादरा कस नेस, दस्तम गीर आखिर व्यप्तम, कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा, कर देम पदी ख्याल, गाहेन नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हमचो बखील गाफिल, बे नजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल पाखाक। चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, ये सत कबीर आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अब आपके सामने पवित्र आत्माओं, ये स्पष्ट प्रमाण हो गया कि परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश्य है, और वो सतपुरुष सतलोक में रहता है, वो मानुष है, और आंखों देखी गवाही दे दी इस पुण्य आत्मा गुरु नानक देव जी ने, और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने प्रमाण दे दिया। अब आने वाले समय में आप सुनते रहिएगा।